इस संदेश की श्रृंखला को डॉक्टर बिल माउंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका नाम है बाइबल की 52 मुख्य घटनाएं। और अधिक सामग्री के लिए आप कृपया जाएं www.biblicaltraining.org पर। दर में ठहराया जाना। परिचय। पॉलस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के अंत में था और उसकी योजना बेट ले जाने की थी और जैसा कि अन्य जातीय कलीसियाओं में इसे इकट्ठा कर रहा था ताकि यरूशलम में वापस जाकर यहूदिया कलीसिया को दे सके। लेकिन फिर वो अपने आधारभूत कार्य को आगे ले जाना चाहता है। वह अंताकिया से आगे, जिसे आजकल सीरिया कहा जाता है, और रोम को जाना चाहता है क्योंकि पॉलस अपनी चौथी मिशनरी यात्रा की योजना बना रहा है। वह एक डीएम आगे पश्चिम में जाना चाहता है, शायद स्पेन तक। पॉलस वहां पर चार करना चाहता है जहां कभी किसी ने ना किया हो। इसलिए वह रोमियों की पत्री में लिखता है क्योंकि वह चाहता है कि रोम की कलीसिया उसके धर्म सिद्धांत को जान ले। वह चाहता है कि वे उसकी मदद करें जैसे कि वो पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हम क्या पाते हैं कि रोमियों की पत्री में यह एकदम उचित रीति और कर्मबद्ध तरीके से पेश किया गया सुसमाचार है जो कि पूरे नए नियम से एकदम अलग है। पहला अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। पॉलस ने अपना शोध कार्य 1:16-17 में लिखा है। वो कहता है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, यह उदार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पॉलस सुसमाचार से लजाता नहीं है और वह यीशु मसीह की कहानी और जो वो है, जो उसने कार्य किया, उससे लजाता नहीं है। पॉलस कभी परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग इसके विषय में क्या सोचेंगे क्योंकि वह जानता है कि यह सच्चे है। और मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं क्योंकि यह सत्य है। यह काफी दिलचस्प बात है कि पॉलस वचन 4 में सामर्थ के लिए वही शब्द इस्तेमाल करता है जो उसने, वही सामर्थ जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया बताने के लिए कहा। जब पॉलस आप और मैं बिना लज्जा के सुसमाचार को उसी सामर्थ के साथ बांटते हैं तो हम जानते हैं कि यह वही सामर्थ है जो लोगों को मुर्दों में से जिंदा करती है। यह वही पुनरुत्थान की सामर्थ है जो हमारे उद्धार को संभव बनाती है। हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से अलग थे और पापी होने के नाम पर हम इसके बीच में जी रहे थे। अगर हम बचाए जा रहे हैं तो वह सिर्फ परमेश्वर की उस सामर्थ के साथ ही बचाए जा रहे हैं। अगर परमेश्वर हमें नहीं बचाता तो हम अपने पापों के लिए अपनी मृत्यु के साथ दंड भोगते। लेकिन ये उद्धार के लिए है जो विश्वास करना है, पहले यहूदियों के लिए फिर यूनानियों के लिए। सुसमाचार निस्संदेह सबके लिए है। इसके लिए कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई सामाजिक या आर्थिक बाधाएं नहीं है। यह सबके लिए है। और ये जो कथन है कि पहले यहूदी फिर यूनानी, दूसरे शब्दों में यहूदियों और गैर यहूदियों के लिए, सिर्फ एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का कथन है। पॉलस कोई स्वरहितवादी नहीं है। पॉलस नहीं मानता कि उदार हर एक व्यक्ति और समय के लिए है। क्या आपने यह बात देखी? सुसमाचार सिर्फ उनके लिए कार्यकारी है जो विश्वास करते हैं। इसलिए उदार का उपहार, सुसमाचार का उपहार सबके लिए है, लेकिन यह सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो विश्वास करते हैं। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, पहले यहूदी और फिर गैर यहूदियों के लिए। यह काफी दिलचस्प है कि हम रुकें और अपने आप से पूछें कि क्यों पॉलस या हम सुसमाचार से लजाएंगे। क्यों अक्सर हमें अपने शब्दों को जहां इस तरह से पेश करते हैं कि लोग जान नहीं पाते कि हम मसीही हैं। क्यों अक्सर हम यीशु नाम लेने से रुक जाते हैं। पॉलस जहां हम क्यों सुसमाचार से लजाते हैं। ठीक है, यह तो एकदम सीधी बात है। मैं सोचता हूं सुसमाचार मनुष्य की अयोग्यता का संदेश है। सुसमाचार मनुष्य के अहम का संदेश है। सुसमाचार का संदेश जो बताता है कि हम अपने जीवन में पाप से स्वयं नहीं लड़ सकते। सुसमाचार उन असफल धार्मिक कट्टरपंथी यहूदियों के लिए है जो वो सब करने का दावा करते हैं जो आप और मैं अपने आपसे नहीं कर सकते। सुसमाचार का केंद्रीय गीत यह नहीं है कि मैंने इसे अपने तरीके से किया। सुसमाचार का केंद्रीय गीत है कि परमेश्वर ने इसे अपने तरीके से किया। सुसमाचार अपनी सत्ता पर लज्जाजनक, कमजोर, बेकार दर्शन शास्त्र, वो दर्शन शास्त्र जो दीन और सभे होने का मूल्य देता है, हुआ प्रकट होता है। जे आपको किसी टॉप 10 फिल्मों में जगह नहीं दिलाएगा उन नायकों में जो दीन और सभ्य हैं। जे वो सुसमाचार है जो शत्रुओं से प्रेम करने और प्रतिरोष को परमेश्वर के हाथों में छोड़ने को लिए कहता है। पॉलस कभी अपने हाई स्कूल में प्रसिद्ध नहीं रहा होगा, क्या रहा होगा? वह कभी अपने कॉलेज में प्रसिद्ध नहीं रहा होगा, वह अपने कार्य में कभी प्रसिद्धि नहीं रहा होगा, लेकिन फिर सुसमाचार सत्य है, पॉलस आप और मैं इससे लजाते नहीं हैं। पॉलस इस बात के लिए क्यों इतना निश्चित था कि सुसमाचार उद्धार का समाचार है, ठीक है, वो हमें अगले ही वचन में बताता है, वचन 17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सुसमाचार का संदेश यीशु मसीह कौन है और जो मुख्य रूप से कार्य उसने किया, यह कहानी ही परमेश्वर की धार्मिकता का संदेश है। धार्मिकता उन तीन अलंकारों में से एक है जो पॉलस ने रोमियों के इस भाग में इस्तेमाल किए हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द धार्मिक और दोष मुक्त दोनों यूनानी भाषा के एक ही शब्द से निकले हैं। दोष मुक्ति और धार्मिकता दोनों एक ही बात है। यह अलंकार जो कि अदालतीय कानून से निकलता है कि अगर आप किसी जुर्म में दोषी पाए जाएंगे और आपको अदालत में ले जाया जाएगा और आप पर मुकदमा चलाया गया तो आप न्यायाधीश से क्या सुनना चाहेंगे, कि आप धर्मी हैं या आप दोष मुक्त हैं, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपके विरुद्ध जो अपराध बताए गए हैं आप उनसे बाहर हैं। इसलिए आप और मैं इस बात के न्यायाधीश से ये कहते हुए सुनने के इच्छुक हैं कि आप धर्मी हैं, आप अपने अपराध के लिए दोषी नहीं हैं। आप सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता की कहानी है। असल में सुसमाचार हमें परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में दो बातें बताता है। सबसे पहले कि परमेश्वर स्वयं धर्मी है, परमेश्वर अपनी सारी पवित्रता में संपूर्ण है, परमेश्वर पवित्र और पाप रहित है, और सुसमाचार हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर लोगों को धर्मी बनाने के कार्य में लगा हुआ है, परमेश्वर लोगों को दोष मुक्त और पाप रहित घोषित करने में लगा हुआ है। शिष्यता की भाषा जो अक्सर मैं इस्तेमाल करता हूं, वही पॉलस जहां इस्तेमाल करते हुए कहता है कि कैसे आप और मैं यीशु मसीह के शिष्य बने, हम धर्मी कैसे बने और वो इसे करता कैसे है, परमेश्वर कैसे आपको विश्वास के लिए और मुझे दोष रहित धर्मी और पाप से अनजान बनाता है। यह एकदम पूर्ण तौर पर विश्वास का कार्य है, यह विश्वास से और विश्वास के लिए है। हम अपने कार्यों से धर्मी नहीं बनाए गए हैं, हम परमेश्वर की कृपा कमाने के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि हम अपने विश्वास और पूर्णतः विश्वास से ही धर्मी बने हैं, और ये मानते हुए कि यीशु ने हमारे लिए कार्य पहले ही पूरा कर दिया है। आजकल कार्य कैसे लगते हैं, ये कैसा लगता है जब लोग स्वयं उदार कमाने की कोशिश कर रहे हैं और जब वे अपनी धार्मिकता खरीदने की कोशिश करते हैं। जब गली की नुक्कड़ पर आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के से इस बारे में पूछेंगे तो वे क्या कहेंगे, मैं कोई बुरा काम नहीं करता, सचमुच मैं कोई बुराई का काम नहीं करता। वे सोचते हैं कि बुरा काम ना करके वे परमेश्वर की कृपा कमा रहे हैं। हो सकता है गली वाला प्रसिद्ध व्यक्ति ये भी कहे कि मैं अपने पड़ोसी से बेहतर हूं। बेशक अगर आप अपने पड़ोसी से पूछें, वे सोचते हैं कि वे आपसे बेहतर हैं। हो सकता है कि वे कहें, मैं कुछ भले कार्य करता हूं और समय समय पर चर्च जाता हूं, असल में मैं कुछ बेंट भी डालता हूं, और जब बेंट की थैली मेरे पास से गुजरती है, और मैं काफी गंभीर भी हूं, और ये सभी काम लोग करते हैं जिन्हें पॉलस कार्य कहता है, और जिनसे वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर के अनुग्रह को कमा रहे हैं, वे परमेश्वर की धार्मिकता को कमा रहे हैं। यह एक सामान्य सा धागा है जो कि संसार के सभी धर्मों में से निकलता है। यह एक सामान्य बात है जिसे सिर्फ मसीहियत को छोड़कर बाकी सब धर्म बताते हैं कि कुछ कार्य हैं जिन्हें करने के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को कमा सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो मसीहियत में कुछ सनकी मत की सामान्य रूप से मानते हैं, चाहे वो मॉर्मोन्स हों या यहोवा के साक्षी या कोई और। कुछ विशेष कार्य हैं जिनके करके वह सोचते हैं कि वह परमेश्वर के अनुग्रह को कमा रहे हैं, और दुर्भाग्य से कैथोलिक्स के धर्म सिद्धांत में तो यह पक चुका है कि आपका उद्धार विश्वास और भले कार्यों से ही होता है। यह उनके दस्तावेजों में लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, कि मसीह की क्रूस पर मृत्यु ये बहुत ही बुरी थी, ये हमारे पापों का प्रायश्चित थी और हमें धर्मी बनाने के लिए काफी नहीं थी। हम अपनी धार्मिकता को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ कार्य भी हैं जो जरूरी रूप से हम करते हैं, जैसे कि अपने परम संस्कार, इनमें शामिल हैं पाप मोचन अवस्था, संतों की विशेषता, यीशु की विशेषता, और फिर ये सभी कार्य मिलकर चलते हैं ताकि हम परमेश्वर की मदद कर सकें और हमारा उद्धार कर सकें। ये वो विचार हैं कि हम परमेश्वर के पास खाली हाथ नहीं आते, परंतु कुछ ना कुछ हाथों में लेकर ही उसके पास आते हैं। मैं कुछ लेके आता हूं अपने हाथों में ताकि परमेश्वर को अर्पित कर सकूं। गलत ना सिर्फ क्रूस के पर्याप्त होने के बारे में, लेकिन हम धर्मी कैसे बनते हैं, परमेश्वर के साथ सही कैसे बनते हैं के बारे में भी गलत है। वो हमें धर्मी बनाता है, ना कि कार्यों के जरिए, ना उन चीजों के जरिए जो हम करते हैं। हम तो सिर्फ विश्वास से ही धर्मी बनाए जाते हैं। आजकल विश्वास कैसा लगता है? विश्वास आजकल बहुत ही पुराने नियम के नबी हबकूक के समान लगता है। हबकूक बाहर संसार को देखा और उसने कहा कि परमेश्वर, ऐसे लगता है धर्मी तो दुख उठा रहे हैं परंतु दुष्ट जन प्रतिफल पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। और हबकूक 2:4 में परमेश्वर ने कहा, हबकूक, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यही वो वचन है जो पौलुस रोमियो 1:17 में लिखता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ताकि तुम मान लो कि एक दिन धर्मी को उसका प्रतिफल मिलेगा, ताकि तुम मान लो कि दुष्ट जन एक दिन दंडित होगा। लेकिन धर्मी लोग ये मानते हैं कि चाहे उन्हें कुछ नजर नहीं आता फिर भी विश्वास करते हैं। इसीलिए हबकूक के अंतिम अध्याय में वह विश्वास के साथ प्रतिउत्तर देता है, हबकूक 3:17, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, बेड़ शलाओं में बेड़ बकरियां ना रहे, ना थानों में गाय बैल रहे, दूसरे शब्दों में चाहे हर एक वस्तु पूरी तरह से उजड़ी हुई नजर आए, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। विश्वास ऐसा ही तो दिखता है। हम फिर भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वही है जो वो कहता है कि वो है, और वो वह करेगा जो वह कहता है कि करेगा। वह धर्मी को प्रतिफल और दुष्ट को दंड देने वाला है। विश्वास का अर्थ है कि हम अपने घमंड का समर्पण कर देते हैं। विश्वास का अर्थ है हम अपने आप को धर्मी बनाने में अपनी अयोग्यता को मान लें और खाली हाथ लेकर परमेश्वर के पास आए, ताकि वह मसीह के कार्य द्वारा हमको भर दे। और विश्वास द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं। मैं सुसमाचार से ले जाता नहीं, क्योंकि यह विश्वास करने वालों के लिए, उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए, क्योंकि इसमें परमेश्वर की सामर्थ विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट हुई है। जैसे कि लिखा गया है कि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। ये है पौलुस का रोमियो की पत्री का शोध कार्ड। याद किए जाना चाहिए जो कुछ भी वचन 1:18 से आगे अध्याय 8 तक चलता है, जैसा पौलुस के वचन 17 और 18 की व्याख्या है। अपने शोध कार्य को बताते हुए बाद में पौलुस अपने मुकदमे को बनाना शुरू करता है। अध्याय 1:18 से लेकर अध्याय 3:20 तक पौलुस ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मसीह को छोड़कर कोई भी धर्मी नहीं है। अगर धार्मिकता सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास के जरिए है, तो धार्मिकता और कहीं से हो भी नहीं सकती है। अगर हम इस कथन को उल्टा करें, अगर मसीह को छोड़कर बाकी लोग धर्मी हैं, तो धार्मिकता सिर्फ परमेश्वर से ही नहीं है। इसलिए वचन 1:18 से 3:20 तक पौलुस इस बात को साबित करना चाहता है कि यीशु मसीह के कार्य को छोड़कर कोई भी धर्मी नहीं है। और वचन 1:18 से लेकर अध्याय के अंत तक पौलुस इस बात की गहन खोज करता है, जिसे हम सामान्य प्रकाश कहते हैं। परमेश्वर के बारे में जो जानकारी है, सब समों के सब लोग इसे जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अंगूठे के निशान इस भौतिक संसार में छाप रखे हैं। आकाश और सितारे, प्रकृति के पृथ्वी पर उसने अपने आप को छाप दिया, ताकि सभी लोग उसके बारे में कुछ बातें देख सकें और उसके बारे में कुछ बातें जान सकें। रोमियो 1:19 के वचन 19 में देखिए, इसलिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व और जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, जहां तक के आप और मैं निरुतर हैं। हर एक व्यक्ति जो कभी इस दुनिया में रहा हो, कोई भी बात नहीं जो इस ग्रह पर किस स्थान पर हो, 3 बातें जरूर जानना है कि जैसे वो इस रचित संसार को देखते हैं, वो इस बात को जरूर जानते हैं कि जिस परमेश्वर ने इसे बनाया है वह सर्वशक्तिमान है। वे जानते हैं जिस परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है वह दिव्य है, जिसका अर्थ है कि वह सृष्टि से अलग है। और तीसरी बात जो इनमें पाई जाती है, सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर मौजूद है। दूसरे शब्दों में, सच्चा नास्तिक कोई नहीं, कोई सच्चा ब्रह्मवादी नहीं, कोई सच्चा आत्मवादी नहीं, हर कोई जानता है कि परमेश्वर मौजूद है, वह सर्वशक्तिमान है, वो सारी सृष्टि से अलग है। और फिर भी जैसे कि पौलुस बहस करता है, हालांकि हम सब इसे जानते हैं, फिर भी इसके लिए किसी ने कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया। वे सब निरुत्तर हैं, क्योंकि वह सभी इसके प्रति प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि वह परमेश्वर और प्रकृति के बारे में क्या जानते हैं, और उन्होंने नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर का हमारे पापों के प्रति 2 प्रकार का प्रत्युत्तर है। पहला, कि उसके क्रोध से प्रत्युत्तर दिया। वचन 1:18, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखिए, हमारी समस्या बौद्धिक या सामाजिक या सांस्कृतिक नहीं है, हमारी समस्या तो नैतिक है। हमारी समस्या पाप है और यह क्रोध में हमारे पाप के प्रति प्रत्युत्तर देता है और हमें हमारे पाप के हाथों में समर्पित कर देता है। ये वो राग है जो बाकी के पूरे तरह से पहचानना ना चाहा। हमारी समस्या पाप है और यह हमारी अधार्मिकता की वजह से है। और जो कुछ हम परमेश्वर की सच्चाई के बारे में जानते हैं, हम उसे दबा देते हैं। ये तीन बार दोहराया गया है। लेकिन उदाहरण के लिए 1:28 को देखिए, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जो वो उसके बारे में सृष्टि में देखकर जानते, तो परमेश्वर ने उन्हें भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए और डाह और हत्या, झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, और सूची आगे चलती रहती है। हर कोई परमेश्वर के बारे में कुछ जानता है, किसी ने इसके बारे में प्रतिउत्तर नहीं दिया। परमेश्वर का क्रोध उचित है और उसने हमें हमारे पापों के हाथों में समर्पित कर दिया है और हम उस उल्टी कुंडली में फंस गए हैं। और आप समझे कि धर्मशास्त्र के प्रवाह में भी वचन 1:18 से लेकर 3:21 तक कहीं भी यीशु मसीह ऊपर नहीं आता। इसलिए जो दुनिया बिना यीशु मसीह के है, 2 अध्याय में पौलुस क्या कहता है, वह अब यहूदियों की ओर मुड़ता है, क्योंकि 1:1 से ही यहूदी लोग तालियां बजाकर पौलुस को उत्साहित कर रहे थे और वह कह रहे थे, हाँ पौलुस, इन्हें ही पकड़ो, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, जे मूर्ति पूजकों की टोली इनके साथ ऐसा ही हो। और फिर 2:2 में पौलुस उनकी ओर मुड़ता है और कहता है, रुको एक क्षण, तुम भी तो वही काम कर रहे हो। यहूदी सोचते थे कि वह परमेश्वर के खास लोग हैं, इसलिए उनके पाप के लिए छूट थी। और 2 अध्याय में पौलुस कहता है, तुम इसे नहीं समझते, क्या समझते हो, अगर इन गैर यहूदियों के लिए पाप करना गलत है तो तुम यहूदियों के लिए भी गलत है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और आपने भी सही प्रत्युत्तर नहीं दिया जो परमेश्वर के बारे में आप जानते हैं, और तुम भी पूर्णतः अधर्मी हो। फिर हम 3 अध्याय में आते हैं और पौलुस अपने मुकदमे के पहले हिस्से का सारांश करना शुरू कर देता है। यह नए नियम का एक गहन अध्याय है, जो पुराने नियम का एक प्रकार से सम्मान पत्र है, जिसमें पौलुस एक बात को बहुत ही मजबूत रीति से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी धर्मी नहीं है, ना तो जुनानी ना ही यहूदी। वह आगे भी कहता है, यहूदी और जुनानी दोनों ही पाप की सामर्थ के अधीन है, जैसा कि लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई नहीं समझता है, कोई भी परमेश्वर को नहीं खोजता है, सब भटक गए हैं, मिलकर ये सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भी भला नहीं करता, एक भी नहीं, उनके गले खुली कब्र हैं, वे अपनी जीभ का इस्तेमाल छलने के लिए करते हैं, उनके ओठों के नीचे विषैले सांपों का विष है, उनके मुख शाप और करवाहट से भरा हुआ है, इनके पैर लहू बहाने को तेज है, इनकी राह में दुख और विनाश है और शांति की राह उन्होंने कभी जानी ही नहीं, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का कोई भय नहीं है, और यीशु मसीह के बिना जीवन ऐसा ही है, क्योंकि कोई भी नहीं है जो अपने आप को धर्मी होने के लिए जो भले कार्य करने चाहिए, कोई भी नहीं है। अगर आप अपने पड़ोसी को ऐसे देखना शुरू कर दें जैसे परमेश्वर देखता है, अगर हम लोगों को ऐसे देखना शुरू कर दें जैसे कि मूवी थिएटर छोड़कर जा रहे हैं, जैसे कि परमेश्वर को लगता है, मुझे लगता है कि मेरी विचारधारा है कि मैं अपने पड़ोसी को देखता हूं और कहता हूं, ये तो अच्छा आदमी है, अपनी पत्नी से प्रेम करता है, अपने बच्चों के साथ समय बिताता है, वो सब सत्य है, लेकिन हमें परमेश्वर की नजरों से उसे देखना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ गहरा और पापमय और नरक की ओर मुड़ा देखेंगे। सीएल लुईस की पुस्तक में एक जगह पर एक खंड आता है जहां वो कहता है नीचे चलने के बारे में, और वो आशा करता है कि वह भी लोगों को ऐसे देखें जैसे परमेश्वर देखता है। ये कितने गंदे और गहरे लोग होंगे, उनके बारे में कालेपन की वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि उनका मन गहरा और पापमय है, वे धर्मी नहीं है। मुझे याद है एक बार मैं कॉलेज में रोमियो की पत्री सिखा रहा था और हमारे साथ बहुत से विदेशी विद्यार्थी भी थे। तभी एक जवान हिंदू विद्यार्थी दौड़कर आई और बोली, क्या ये सही है जो आप मेरे बारे में सोचते हैं? यह एक ऐसा समय है जब आप गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, क्या मैं सचमुच विश्वास करता हूं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र की प्रेरणा से रचा गया है, जो भी लिखा गया है वह उसकी तरफ से लिखा गया है और यह सब सत्य है, हालांकि मेरे अंदर कुछ भी वह कहता है नहीं, मैं नहीं मानता, मैं सोचता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, वो भी थी अच्छी। और मैंने कहा, जब यीशु आपके हृदय को देखता है, अगर आप मसीह के लहू से धर्मी नहीं बनाए गए हैं तो आप बिल्कुल ऐसी ही हैं। ये आसान बात नहीं है 1:18 साल की विदेशी विद्यार्थी को ऐसे बोलना, लेकिन यही तो बाइबल कहती है आपके पड़ोसी, आपके मित्रों के बारे में जो नरक की राह पर हैं। अगर हम उन्हें ऐसे ही देखें जैसे परमेश्वर देखता है, तो कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। सुसमाचार का हृदय 3:21-26। पौलुस ने अपनी संतुष्टि के लिए अपने शोध कार्य के पहले भाग को प्रमाणित किया कि मसीह के बिना धार्मिकता नहीं है, और अध्याय 3:21-26 तक पौलुस बताता है कि यीशु मसीह के जरिए धार्मिकता उपलब्ध है। और यही है रोमियो की पत्री का हृदय, हर एक वचन आपकी बाइबल में रेखांकित किया जाना चाहिए, धार्मिकता। पौलुस कहना शुरू करता है कि सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ही है। वचन 21, परंतु अव्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। पुराने नियम हमें परमेश्वर की धार्मिकता की ओर इशारा करता है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। सुसमाचार हमें बताता है कि हम धर्मी बनाए गए हैं, और इसके 3 बिंदु हैं। पहला, हम अपने विश्वास के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं, जिसके जरिए नहीं के जो हम करते हैं, बल्कि उसके जरिए जो हम विश्वास करते हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं, और इस बात को पूर्णता मान लेते हैं कि परमेश्वर वही है जो वह कहता है कि वो है, और उस कार्य को पूरा करेगा जो वह कहता है कि वो करेगा। हम धर्मी ठहराए जाते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करके। हम मानते हैं कि यीशु वही है जो उसने कहा कि वो है, और उसने जो कहा उसने काम कर दिया, जो उसने कहा था कि वो करेगा। जब उसने कहा था कि जे पूर्ण हुआ, क्या आप और मैं इस पर विश्वास करते हैं? दूसरा, सुसमाचार हमें यह बताता है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं और यीशु मसीह में विश्वास करके, विशेष तौर पर उस कार्य में जो उसने क्रूस पर किया। किसी उचित चीज पर विश्वास ना रखना भी नरक की ओर ले जाता है। क्या जे ठीक है, गंभीरता आपको स्वर्ग नहीं ले जाती। लोग गंभीर होकर भी गलत हो सकते हैं। हम बहुदेववादी नहीं हैं। परमेश्वर के पास ले जाने वाले कई मार्ग नहीं हैं। क्रूस एक ही है जिसने मंदिर के पर्दे को 2 भाग करके फाड़ दिया है, ताकि हमारी पहुंच सीधी पिता परमेश्वर तक हो सके। हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्यों कि किसी और नाम से छुटकारा नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, दोष मुक्ति नहीं है। प्रेरितों के काम 4:12, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया है जिससे हम बचाए जाएं। इसलिए यह विश्वास है, और विश्वास यीशु मसीह में है। तीसरा, यह विश्वास सबके लिए है। धार्मिकता सब विश्वास करने वालों के लिए उपलब्ध है। इसमें कोई जातीय बाधा नहीं है, किसी और प्रकार की बाधा नहीं है। हम सभी एक ही नाव में सवार हैं। धार्मिकता विश्वास के द्वारा उपलब्ध है, लेकिन विश्वास उचित व्यक्ति यीशु मसीह में है, और यह सब के लिए है, यहूदियों के लिए और गैर यहूदियों के लिए। और फिर पौलुस क्या कहता है, वह अपने आप से इस बात को दोहराता है कि लेकिन उल्टे क्रम में वह कहता है कि कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और दोष मुक्ति उनके अनुग्रह के उपहार के रूप में है, उस छुटकारे में जो यीशु मसीह में है, जिसे परमेश्वर ने एक प्रायश्चित के रूप में उसके लहू के द्वारा आगे रखा, ताकि विश्वास के द्वारा पाया जा सके। यह तो एक मूर्खता के समान है, जैसा कि धर्म सिद्धांत बाइबल में सिखाता है। ये उतना ही कठिन है जितना हम कह सकते हैं। आइए हम इसे खोलें जो पौलुस कहता है। पाप ने हमें उस महिमा से अलग कर दिया जो कि परमेश्वर चाहता था कि हमारे पास हो। फिर चाहे हम यहूदी या गैर यहूदी, अमरीकी हों गैर अमरीकी हों, श्वेत हों अश्वेत हों, अमीर हों गरीब हों, बैप्टिस्ट हों या गैर बैप्टिस्ट हों। इसलिए अगर हमें दोष मुक्त होना है, धर्मी ठहरना है, तो परमेश्वर को ही कुछ करना होगा, क्योंकि हम महिमा रहित लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोष मुक्ति उसके अनुग्रह के जरिए, जो कि अनर्जित कृपा है और एक उपहार के रूप में है। मैं आपको नहीं बचा सकता, आप अपने आप को नहीं बचा सकते। अगर हमें धर्मी ठहरना है, दोष मुक्त होना है, तो परमेश्वर को ही हमारे लिए कुछ करना होगा। लोगों को यह पसंद नहीं है। पसंद है? संसार के लोग इस संदेश को पसंद नहीं करते। वे अपने पापों का कोई उपाय नहीं कर सकते। जो भी वह सोच सकते हैं वो वह करते हैं, और परमेश्वर के लिए हमारे लिए कुछ करना होगा। इसलिए सुसमाचार के लिए ज्यादा लज्जा आती है, क्योंकि संसार सिखाता है कि यह एकदम उल्टा है। फिर भी अगर हमें दोष मुक्त होना है, तो यह हमें दिया जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम इसके योग्य हैं, परंतु इसलिए कि परमेश्वर दया और अनुग्रह का परमेश्वर है, और वह उपहार क्या है जो परमेश्वर हमारे लिए थामे हुए है, जैसे छुटकारे का उपहार है जो मसीह यीशु के द्वारा ही संभव हुआ है। यीशु द्वारा क्रूस पर संभव हुआ है छुटकारा। धार्मिकता के बाद छुटकारा दूसरा अलंकार है जिसका पौलुस इस्तेमाल करता है। यह एक ऐसा अलंकार है कि जब लोगों ने शब्द छुटकारा सुना, तो उन्होंने दास बाजार के बारे में सोचा होगा, क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा कि वह किसी को छुड़ाने जा रहा है, तो उन्होंने सोचा होगा कि वह किसी सिटी सेंटर शहर के द्वार पर या किसी गुलाम को स्वतंत्र करवाने के लिए जा रहा होगा, कि वह किसी गुलाम को छुड़ाने जा रहा होगा। छुटकारे के विचार के साथ दो बातें जुड़ी हैं। पहली कि उसके लिए मूल्य चुकाया जाना और दूसरी कि वह स्वतंत्रता की प्राप्ति की जाती है। छुटकारे का अलंकार दास बाजार से लिया गया है, कीमत चुकाई और स्वतंत्रता पाई, और जो कीमत चुकाई गई वह मेमने का लहू है और जो स्वतंत्रता पाई गई जो लाभ है जिसके में आप और मैं पाप की शक्ति से छूट गए। जॉन बनियन जिसने के तीर्थ यात्री की प्रगति नामक पुस्तक लिखी उसमें उस अपने जीवन में बहुत ही पाप से संघर्ष किया। वह हमेशा अपने जीवन में अतीत के पापों में दबा रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे परमेश्वर उसे धर्मी बना सकता है। फिर जब वो रोमियो 3:24 में आया तो उसने कहा कि यही एक वचन है जिसने सब कुछ खोल दिया। मैं बनियन का कथन बताता हूं। जैसे मैं उतार चढ़ाव में अपनी दुर्दशा पूर्ण अवस्था में घर चला जा रहा था तो परमेश्वर के वचन ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया। आप मुफ्त में उसके अनुग्रह से यीशु मसीह के जरिए छुटकारे द्वारा निर्दोष ठहर सकते हैं। लेकिन इसने मुझ पर क्या असर डाला? मैं ऐसा था जैसा कि कोई भयंकर नींद से उठा हो और सपना देखते हुए और एक स्वर्गीय वाक्य सुनते हुए मैंने इसे ऐसे कहते हुए सुना। दूसरे शब्दों में उसने 3:24 ऐसे ही सुना, पापी क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी बीमारी के कारण मैं तुम्हारे प्राण को बचा नहीं सकता? लेकिन देखो मेरा बेटा मेरे पास है और उसे ही देखता हूं, तुम्हें नहीं, और मैं तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करता हूं जिससे कि मैं उससे प्रसन्न हूं। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और उसके अनुग्रह और यीशु मसीह के जरिए छुटकारे के द्वारा दोष मुक्त हुए हैं। प्रायश्चित। लेकिन यीशु मसीह ने हम सबको कैसे छुड़ा लिया? उसने हमें छुड़ाया अपने लहू के द्वारा प्रायश्चित देकर, और विशेष तौर पर क्रूस पर उसका लहू। प्रायश्चित तीसरा अलंकार है जिसका इस्तेमाल पौलुस इस बाग में करता है। यह अलंकार है जो कि बलिदान प्रक्रिया से आता है। यही तो होता है जब आप किसी जानवर का गला काट देते हैं। यही तो होता है जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा। और जैसे मैंने श्रृंखला पर कई पक्षों का सिखाया जब मैं लेवे व्यवस्था के बारे में सिखा रहा था, मुझे एक यूनानी शब्द इस्तेमाल करना था। क्षमा करें, मैं यूनानी शब्द है हिलास्टरोन, और समस्या यह है कि हमारे पास इंग्लिश में ऐसा कोई उचित शब्द नहीं है जो कि हिलास्ट्रियन को सही अनुवाद कर सके। हिलास्ट्रियन में प्रायश्चित का विचार सम्मिलित है। इसका अर्थ है कि जब यीशु क्रूस पर मरा तो उसकी मृत्यु का मुख्य आकर्षण परमेश्वर की तरफ था, और यह विचार है कि मसीह की मृत्यु ने परमेश्वर के क्रोध को शांत किया। परमेश्वर के विरुद्ध में परमेश्वर का क्रोध शांत किया गया। परमेश्वर पाप की वजह से क्रोधित था, इसलिए हिलास्ट्रोन मसीह का बलिदान और मृत्यु प्रायश्चित था, क्योंकि उसने सब कुछ सही कर दिया। उसने ही उत्तर दिया, परमेश्वर के क्रोध को संभाला। परंतु हिलास्ट्रोन में परिशुद्धता का भी विचार है, और इंग्लिश भाषा में शब्द परिशुद्धता का अर्थ है मसीह ने जो क्रूस पर किया उसका बहाव आपके और मेरी तरफ भी था, क्योंकि जो मसीह ने क्रूस पर किया उसके कारण हमारी दोषी होने की भावना मिट गई। प्रायश्चित के द्वारा हमारे दोषी होने का एहसास दोष सचमुच में ही मिटा दिया गया, परिशुद्ध हो गए। लेकिन हिलास्ट्रियन में एक और विचार भी है। प्रायश्चित का डकना हिलास्ट्रियन है। वाचा के संदूक के ऊपर जो अति पवित्र स्थान में रखा हुआ था वहां साल में एक बार महाजाजक जाता था और प्रायश्चित के लिए लहू छिड़काता था ताकि पूरी इसराइल जाति के पाप को क्षमा मिल सके। लेकिन वह प्रायश्चित का डकना अब गुप्त नहीं है। वो प्रायश्चित का डकना अब सार्वजनिक रूप में है। प्रायश्चित का डकना है क्रूस। ये क्रूस ही है जहां मसीह ने हिलास्ट्रोन को चढ़ाया। प्रायश्चित ताकि परमेश्वर का क्रोध शांत हो सके और हमारे दोषी होने की भावना मिट सके। विश्वास द्वारा पाना। उसने हमें आगे रखकर अपने लहू के द्वारा प्रायश्चित करके हमें छुड़ाया। लेकिन ध्यान दीजिए, पौलुस ने जो कहा उसमें जोड़ना पड़ा है, विश्वास के द्वारा प्राप्त करना है। क्षमा क्रूस पर लटक रही है, आपको इसे प्राप्त करना है, ले लेना है। अगर आपको आपके जीवन में इसे कारागार करना है तो इसे अपने पास लेना होगा। कोई भी शक्ति हो, कोई भी कार्य हो, अगर आपको धर्मी बनना है तो ऐसे ही लेना होगा। समझ के लिए, क्रूस पर से विश्वास के द्वारा मेरे ऊपर लागू हुआ। इसीलिए हमारे पास सुसमाचार की ABC है ताकि धर्मी बनाए जाने के लिए हम इसे करें। ए, मान लें कि आप पापी हैं, परमेश्वर न्याय को मान लें कि हम उससे अलग किए गए हैं। बी, विश्वास करें कि मसीह ने हमारे पापों का मूल्य क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा चुका दिया है। उसने ऐसा कर दिया क्योंकि हम परमेश्वर मानव हैं। और फिर परमेश्वर सी, हमारे जीवनों को उसे सौंप दें, अपने जीवनों को समर्पित कर दें, विश्वास का, आज्ञाकारिता का और उसके सेवा का जीवन करके। प्रायश्चित विश्वास द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर आप इसे नहीं पाते हैं तो यह क्रूस पर ही रहेगा और आप नरक में चले जाएंगे। एक दिन किसी ने मुझे पूछा, अगर आप संवेदनशील खोजी हैं, मैंने कहा, मैं उन लोगों को बताने में इच्छुक हूं जो अपने पाप में मरेंगे और नरक में जाएंगे। हमें संवेदनशील खोजी बनना है। हमें यह समझना है कि इस कमरे में इस समय भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारे साथ बैठा हमारा पड़ोसी गलत सुसमाचार द्वारा गुमराह किया गया हो और वह विश्वास करने लगे हों कि वह गंभीर हैं। अगर ये कुछ बातें विश्वास करेंगे तो आप बचाए जाएंगे, ठीक है। दुष्ट आत्माएं तो भी विश्वास करती हैं, वे कांपने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि इसके लिए इतना ही करना है और वे स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन धार्मिकता सिर्फ क्रूस पर मसीह की मृत्यु के द्वारा ही है, जो कि परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए है। वह आपके और मेरे द्वारा पाई जाती है, और सिर्फ विश्वास के द्वारा, ना सिर्फ हमारे कार्यों के द्वारा। उसके बिना वह नर्क ही जाएंगे और आप भी, और हम वहीं संवेदनशील खोजी हैं जहां पर। कृपया मेरे साथ पढ़ें रोमियो 1:16-17, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, यहूदी फिर जुनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास और विश्वास के लिए प्रकट हुई है, जैसा कि लिखा है, धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। सुसमाचार संदेश है कि उदार है, यह सबके लिए उपलब्ध है। हम में से हर एक ने पाप किया है और आपने अपने आप को परमेश्वर से स्वयं अलग कर दिया है, और मसीह हम सबके हिलिस्ट्रॉयन के लिए क्रूस पर मरा, हमारे छुटकारे और क्षमा के एकमात्र जरिए के रूप में। छुटकारा सबके लिए परमेश्वर के अनुग्रह के उपहार के रूप में दिया जाता है। आप इसे कमा नहीं सकते हैं, आप सिर्फ इसे विश्वास के द्वारा पा सकते हैं कि मसीह वही है जो वह कहता है, और उसने वही काम किया जो उसने कहा कि उसने किया है। और फिर सुसमाचार हमें विश्वास का जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करने के लिए बुलाता है। परमेश्वर जहां पर इससे ल जाने के लिए कुछ नहीं है, यह उदार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, और हम इसका प्रत्युत्तर शर्म बै के साथ ना दें, लेकिन पूर्ण आनंद और सुरक्षित समझ कर दें।